गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले हैं तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों के नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहंभाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति है। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है, शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं कि जिसको कुछ जानना है वह भी दुखी है, जिसको कुछ पाना है वह भी दुखी है, जिसको कुछ छोड़ना है वह भी दुखी है। कुछ पाना है और वह दूर है तो वह जाना पड़ता है अथवा उसे बुलाना पड़ता है। कुछ छोड़ना है तब भी प्रयत्न करना पड़ता है और जानने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन अपने आप को पहचानना है तो न पकड़ना पड़ता है, न छोड़ना पड़ता है, न दूर जाना पड़ता है। केवल अपने आप को खोजने का ज्ञान सुनना है, समझना है। जो अपना आपा है उसको पाना क्या और अपने आप को छोड़ना क्या, अपने आप से दूरी भी क्या, इतना आसान है परम तत्व परमात्मा का ज्ञान। लेकिन उसके लिए आवश्यक है तीव्र जिज्ञासा, अंतःकरण की शुद्धि, शिष्य का समर्पण और गुरु का सामर्थ्य। ये चीजें होती हैं तब काम बनता है। गुरु समर्थ हो और शिष्य की श्रद्धा हो। शिष्य समर्थ कैसे हो? शिष्य का सामर्थ्य है कि वह छल कपट बेईमानी छोड़ने में समर्थ हो, अपनी मनमानी छोड़ने में समर्थ ही हो। और गुरु का सामर्थ्य है कि अनुभूति के वचन हो। शिष्य में सामर्थ्य चाहिए गुरु ज्ञान को पचाने का और गुरु में सामर्थ्य चाहिए शिष्य को देने का। शिष्य में सामर्थ्य चाहिए कि मनमुक्तता छोड़ दे, गुरु में सामर्थ्य चाहिए कि अनुभव को स्पर्श करके मार्गदर्शन दे सके। गुरु की कृपा और शिष्य का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी कैसा? ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, उसी दिशा का पुरुषार्थ, उससे विपरीत दिशा का पुरुषार्थ घाटा कर देता है। चाहिए तो परमात्मा लेकिन भटक रहे हैं इधर उधर छोटे संग में। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अंधेरी गुफा में अजगर होना अच्छा है, पत्थर के भीतर कीट होना अच्छा है, तथा मरुस्थल का पंगु मृग होना अच्छा है, परंतु अज्ञानी यानी परमात्मा ज्ञान से विमुख का साथ अच्छा नहीं है। अतः संग ऊंचा हो जिससे जिज्ञासा उभरे, जिज्ञासा बढ़े। तीन प्रकार के लोग होते हैं, तालाब में पत्थर जैसे। जब तक पत्थर तालाब में पड़ा रहता है तब तक भीगा रहता है, बाहर निकालो तो कुछ ही देर में सूख जाता है। ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में आते हैं तब तक भीगे रहते हैं, बाहर निकलने के बाद कुछ देर सत्संग का प्रभाव रहता है, बाद में देखो तो वैसे के वैसे। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कपड़े जैसे। कपड़े को सरोवर में डाला, भीगा, ठंडा भी हुआ, बाहर निकाला तो पत्थर जितना जल्दी सूखता है उतना जल्दी कपड़ा नहीं सूखता, समय पाकर सूखता है। ऐसे ही कुछ होते हैं जो सत्संग को और गहराई तक उतारते हैं, गुरु के लोक मांगल्य के कार्य में भी लग जाते हैं, लेकिन उनमें भी जब तक मनमुक्ता का अंश रहता है तब तक सत्संग का ज्ञान और ज्ञान का पूरा लाभ वे नहीं उठा पाते। तीसरे होते हैं शक्कर के ढेले की तरह, सरोवर में डाले तो घुल मिल जाते हैं, उनका अपना अस्तित्व ही नहीं रहता, स्वयं सरोवर हो जाते हैं। ऐसा शिष्य तो लाखों करोड़ों में कोई विरला ही होता है। ब्रह्मवेत्ता का अनुभव बहुत ऊंची स्थिति है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की बराबरी का अनुभव कोई मजाक की बात है। ईश्वर की प्राप्ति एवं ईश्वर प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा हो और मनमुक्ता छोड़े तब पूर्णता का, आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है।